आगे की अगली कविता है यह द्वीप अकेला। प्रश्न, यह द्वीप अकेला का सारांश और विशेष भाव अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, अज्ञेय जी द्वारा रचित काव्य यह द्वीप अकेला के अंतर्गत नवीन भावनाओं के प्रतीकात्मक रूप को प्रस्तुत किया गया है। कवि ने अकेले द्वीप के माध्यम से मानव मन में रोशनी भरने का प्रयत्न किया है। यह द्वीप गर्वीला है, यह विश्व को ज्योति प्रदान करता है और एक ऐसा गीत गाता है जो कवि ने अन्य नहीं गा सकता। अतः इसे वीरान में नहीं अपितु जीवन के कतार में स्थान देना चाहिए, ताकि जीवन सदैव के लिए प्रकाशमय हो जाए। यह द्वीप अकेला काव्य निसंदेह रूप से जीवन में नव स्पंदन प्रस्तुत करता है। कवि ने द्वीप की तुलना मधु, गोरस, अंकुर, प्रकृति से भिन्न भिन्न रूपकों से किया है। द्वीप में मधु के रूप में जीवन की ऐसी रसधार को एकत्रित किया है जो युग युग की कथा अपने में पिरोया हुआ है। यह द्वीप जीवदायिनी, अपूर्व शक्तिदायिनी, अजस्र स्रोत है जो ब्रह्म रूप है। यह द्वीप अनेक विभिन्न लक्षणों को अपने में समेटे हुए है। सहस्त्रों कथाएं, लक्ष्यों, भावनाएं अपने में पिरोए हुए है, सदा ही प्रेरणा स्रोत रहा है। अतः कवि अकेले द्वीप को पंक्ति देने की याचना करता है। यह द्वीप अकेला एक रहस्यवादी, छायावादी विचार का काव्य है। प्रत्येक मनुष्य एक अकेला द्वीप है और अपने में मदमस्त है, अपने ही धुन में निरंतर निमग्न है। कवि ऐसे अकेले द्वीप की पंक्ति प्रदान करने की मांग करता है। यदि द्वीप अकेले ही जलेगा, अकेले ही सर्व कार्य संपन्न करने का प्रयत्न करेगा तो निश्चय ही अपमान, अवज्ञा का प्रतिमान बन सकता है। फलतः इस अकेले द्वीप को पंक्ति देना अर्थात जन समष्टि में सम्मिलित कर देना जरूरी है। यह द्वीप अकेला छायावादी कविता के सकल गुण विधान से ओत प्रोत है। रूपकों एवं उपमानों के माध्यम से कवि द्वीप को मानव से संबंध करने का प्रयत्न किया है। कलात्मक दृष्टि से यह काव्य है, मुक्तक छंद से युक्त है, कला जीवन के लिए ही भावना से भरपूर है, कवि अपने उद्देश्य में सफल है। कविता की व्याख्या एवं उसकी विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। यह द्वीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मतमाता, पर इसको भी पंक्ति दे दो, यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा, यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति दे दो। पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। अज्ञेय जी की प्रतिनिधि काव्यों में से एक मूर्धन्य काव्य है। इस काव्य में कवि ने दीप की तुलना अकेले जन से किया है। कवि ने बड़े ही सरल एवं मार्मिक शब्दों में अकेले दीप को संबोधित करते हुए कहता है कि यह अकेला दीप अपने में गर्वीला एवं मदमस्त है, और फिर कवि याचना करता है कि इस एकांकी दीप को पंक्ति प्रदान कर देना चाहिए। मूल भाव यह है कि प्रत्येक मनुष्य एक दीप की भांति है, उसका अपना अस्तित्व एवं गर्व है, किंतु एकाकी मनुष्य का जीवन अत्यंत ही दुखद होता है। अतः यह हमारा कर्तव्य है कि यह अकेला दीप जो पृथ्वी पर टिमटिमा रहा है उसे भी समिष्टि के साथ पिरो लेना चाहिए। यदि एक जन को पंक्ति में पिरोया नहीं जाएगा तो वह एकाकी गीत गाएगा उसे कोई अन्य नहीं गा सकेगा। एकाकी जन सच्चे मोती के समान है, यदि इसे पंक्ति नहीं देते हैं तो फिर महाकृत की रचना कौन करेगा। यह एकाकी जन एक महाशक्ति जो महाज्योति प्रज्वलित करता है, किंतु यदि इसका तिरस्कार होगा तो नवज्योति कौन जगाएगा। अतः यह महान अद्वितीय है, इसमें मेरा ही भाव व्याप्त है। अतः इस एकाकी जन को सर्वशक्तिशाली गर्वीला मदमस्त है, इसे एक पंक्ति में रखना अनिवार्य है। विशेषताएं, दीप का मानवीकरण किया गया है, विचारात्मक शैली है, शांत रस एवं करुण रस की बहुलता है, मुक्तक छंद है, भाषा खड़ी बोली है। कविता का अगला भाग, यह मधु है स्वयं काल की मौना युग संचय, यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पुत्पय, यह अंकुर फोड़ धारा को रवि को तकता निर्भय, यह प्रकृति स्वयं भू ब्रह्म असुत है, इसको भी शक्ति दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति दे दो। व्याख्या एवं विशेषताएं, अगेजी अन्योक्ति के माध्यम से एकाकी जन की व्याख्या करते हैं। यह एकाकी द्वीप जो एकाकी जन है, जो सदियों से अपने में ज्ञान विज्ञान कला कौशल का सजोकर अनेकानेक गुण भाव को अपने में पिरोकर अनेक मधुर भावों को संचय किया है, यह एकाकी जन का गुण गोरस है जो वास्तव में कामधेनु के समान है। इसमें कामधेनु के सदृश अमृत प्रदान करने की शक्ति है। यह एक विशेष अंकुर के समान है जो पृथ्वी के वक्ष स्थल को चीरकर सूर्य की ओर एकटक भय रहित होकर निहारता है। यह एकाकी जन स्वयं प्रकृति एवं ब्रह्म स्वरूप एकटक भय रहित होकर निहारता है। एकाकी निर्जन में व्याप्त है, इसे भी शक्ति विशेष प्रदान करना परम आवश्यक है। फलतः इसे एक पंक्ति में रखा जाए ताकि इसमें छिपे समस्त गुणों को विकसित किया जा सके। विशेषताएं, दीप की तुलना मधुगोरस अंकुर प्रकृत आदि से की गई है। अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, विचारात्मक एवं भावात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, मुक्तक छंद भाषा खड़ी बोली हिंदी है। कविता की अगली पंक्तियां, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुधलाते कड़वे तम में रहूं सदा द्रवित, चीर जागरूक अनुरक्त नेत्र उलंब बाहु यह चीर अखंड अपनाया, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय इसको भी पंक्ति दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति दे दो। व्याख्या एवं विशेषताएं, कवि एकाकी दीप के झंझावतों समस्याओं उसकी अवस्था परिस्थिति स्तर का वर्णन बड़े ही मार्मिक रूप से किया है। कवि का विचार है कि एकाकी दीप अपने में एक विश्वास जगाए और यह विश्वास ही उसकी परम शक्ति है। उसके जीवन में अनेक कठिनाई आते हैं, एकाकी होने के फलस्वरूप भी वह विचलित नहीं होता। इस एकाकी जन के मन जो भीषण पीड़ा कष्ट दुख दर्द वेदना टीस छिपा हुआ वह अपने में ही अनुभूति करता है। विश्व में अनेक प्रकार के अंधकार व्याप्त हैं। अपमान, अवज्ञा, कुत्सा को सहन करना पड़ता है, किंतु यह एकाकी द्वीप अपने घोर उपेक्षा के पश्चात भी सदैव शांत श्रद्धामय चित्त से दूसरों की को प्रकाशित करने के महाकार्य में जुटा रहता है। अतः कभी का विचार है कि ऐसे महाभाव युक्त एकाकी जन जो स्वयं तिरस्कार, अपमान, अवज्ञा सहकर दूसरों को विकास के ओर अकेले ले जाते हैं, उसे हमें पंक्ति दे देना चाहिए, क्योंकि अनेकानेक कष्ट सहने के बाद भी वह गर्व से भरा मदमस्त भाव से सदैव ओतप्रोत रहता है। विशेषताएं: द्वीप की तुलना एक दुखी एवं संतप्त व्यक्ति से की गई है। भाव दार्शनिक, रस करुण, विभत्स, जुगुप्सा एवं शांत हैं। भाषा खड़ी बोली हिंदी है, मुक्तक छंद। आगे की अगली कविता का शीर्षक है मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंगी गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, मुझको दिख गया सुने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नस्वरता के दाग से। कविता के पंक्तियों की व्याख्या एवं विशेषताएं: मैंने देखा एक बूंद एक छोटा मुक्तक काव्य है जिसे अज्ञेय जी के जीवन का नश्वरवाद दर्शन प्रस्तुत होता है। गीता का दर्शन समाविष्ट है, महात्मा कबीर का रहस्य दर्शन से उत्प्रोत है। पानी केरा बुलबुला असमानुष की जाति, देखत ही छप जाएगा जो तारा प्रभात। महासागर के बीच से एक बूंद जल उदाल लेकर अवकाश मंडल में जो नृत्य करने को आगे बढ़ा, त्यों ही गगन मंडल में चमकता महाज्वाला सूर्य के किरणों ने उसे अभिषिक्त कर अपने में समाविष्ट कर लिया और उस अस्पंदित बुद्ध का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। अज्ञेय जी दार्शनिक कवि भाव से आविर्भूत हैं। उन्होंने एक बुद्ध जल के माध्यम से विश्व की नश्वरता को प्रस्तुत किया है। कौन सा क्षण अस्तित्व को समाप्त कर देगा, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। आगे की अगली कविता का शीर्षक है सोन मछली। हम निहारते रूप कांच के पीछे, हाफ रही है मछली रूप तिसड़ा भी, और कांच के पीछे है जिजीविषा। कविता की पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। अज्ञेय जी द्वारा रचित मुक्तक सोन मछली देखने में बड़े छोटन लगे घाव करे गंभीर के भाव को अभिव्यक्त करती है। सोन मछली का वह सौंदर्य मन को आकर्षित करती है। कांच के टब में रखे सोन मछली को यदि बाहर से देखा जाए तो अत्यंत ही सुंदर प्रतीत होती है और हम उसे बड़ी गंभीरता से देखते हैं, किंतु क्या सोन मछली को भी उतना ही आनंद प्राप्त होता है? कभी का विचार क्या है, क्योंकि वह कांच के पीछे वास्तव में कष्ट का अनुभव करती है और भाग भाग कर हाँपती रहती है, अपने रूप तृष्णा को भी बुझाते हैं, किंतु कांच के पीछे बंद जीव की दशा हर पल कष्ट का अनुभव करती है, क्योंकि वह भी एक जीव है। अज्ञेय जी महात्मा कबीर के अनुयक्ति से प्रभावित हैं। उनका दर्शन आधुनिक भाषा में प्रस्तुत है। आजकल बड़े घरों में एक विचित्र सभ्यता का उदय हुआ है। कांच के बड़े टब में सुनहली मछलियों को रखकर ड्राइंग रूम की सजावट की जाती है। इसी से प्रभावित होकर अज्ञेय जी अपने दर्शन को प्रस्तुत करते हैं। उनका विचार है कि मानव शरीर वास्तव में कांच का है और इसके अंदर सोन मछली की भांति आत्मा हाँफ रहा है। हम बाह्य सौंदर्य से आनंदित होते हैं, किंतु जब आत्मा के बारे में रंच मात्र भी नहीं सोचते, किंतु वास्तविक सौंदर्य कांच में नहीं उसमें विराजमान आत्मा की है, फलतः हमें उसके वास्तविक कष्ट को समझना चाहिए। कात्मक दृष्टि से यह अत्यंत छोटी मुक्तक है। भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, शैली भावात्मक एवं विचारात्मक है, अनुयोक्ति का मूल भाव दार्शनिक है।